करण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी यहां इसलिए एक साथ बैठे हैं कि विचार कर सकें कि हमें अपना शेष जीवन कैसे जीना है। जिस तरह से हमने जीवन जिया है क्या वैसे ही जीवन जीते जाना है या उससे भी कोई जीने का बेहतर ढंग हमें अपने जीवन में अपनाना है। हम लोग अपने जीवन के बारे में बहुत गौर से देखें तो सचमुच हम अनंत क्षमताएं अपने भीतर अनंत संभावनाएं लिए हुए हैं लेकिन हम हमेशा अपने आप को दूसरे के संदर्भ में कंपेयर करके देखते हैं और हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण यही समझ में आता है कि जब भी हम दूसरे के संदर्भ में अपने को देखते हैं तो सिवा मोह और राग द्वेष के कोई और चीज उत्पन्न नहीं होती। जबकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में बेजोड़ है, अनूठा है, कोई व्यक्ति दूसरे के जैसा नहीं हो सकता, वो अपने जैसा ही है। फिर भी हम दूसरे के संदर्भ में दूसरे से कंपेयर करके जब अपने को देखते हैं तो या तो अपने को कमती मान करके दुखी हो लेते हैं और या कि अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर हर्षित हो लेते हैं और इसी हर्ष और विषाद में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हमें विचार करना चाहिए कि अपने जीवन में हम किस दिशा में अपने जीवन को ले जाएं, हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। या तो हम इन भौतिक जड़ पदार्थों के माध्यम से अपने को छोटा बड़ा मान करके अपना जीवन जीना चाहते हैं या कि हम अपनी चेतना के विकास के लिए उत्सुक हैं। हमारी दृष्टि चेतना के सम्मान की अगर है तो चेतना तो सबके भीतर धड़कती है, एक छोटे से जीव से लेकर के बहुत बड़े हाथी तक वही चेतना है। और अगर हम उस चेतना को देखते हैं तो हमारी दृष्टि में फिर चेतना के विकास की बात ही आती है, चाहे वो अपनी हो या कि कहीं और दूसरे के भीतर वो चेतना धड़कती हो। अगर ये हमारी दृष्टि है तो कहीं कोई संसार में उलझन नहीं है। और यदि हम ये सोच करके कि इस चेतना के लिए सुख सुविधा के साधन मुझे जुटाना है और उन्हीं सुख सुविधा के साधनों को जुटा करके उसी के माध्यम से दूसरे से अपने को कंपेयर करके कि मेरे पास सुख सुविधा के साधन कमती हैं, उसके पास ज्यादा हैं, किस चीज में हम कंपेयर करते हैं भैया? कोई कोई कभी किसी को चेतना के स्तर पर कंपेयर नहीं करता है। मैंने कितने भाव से भगवान की पूजा करी इसको कोई नहीं देखेगा, मैंने क्या चढ़ाया था भगवान को ये देखेगा। तो मैं तो थोड़े से चावल चढ़ा पाया, उसने तो हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, और ये मैं चावल चढ़ा करके भी विषाद से घिर जाता हूं कि मैं हीरे नहीं चढ़ा पाया। लेकिन मैंने अपने भाव कैसे बनाए थे और अगले ने कैसे अपने भाव बनाए थे, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। चेतना की तरफ दृष्टि ना होकर हमारी जड़ पदार्थों की तरफ जब दृष्टि होती है तो हमारे जीवन में उलझने आती हैं, हमारे जीवन में हर्ष और विषाद के सैकड़ों अवसर आते हैं और हम अपना पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं। मुझे वो उदाहरण हमेशा याद आता है, पता नहीं मैं आपको कह चुका हूं या नहीं, बहुत लोग होंगे जिन्होंने वो घटना जो सच्ची घटना थी वो नहीं मालूम होगी लोगों को। बहुत पहले एक आर्ट गैलरी में और एक बहुत फेमस एक जो कलाकृति थी वो नीलाम की गई। इतनी बेजोड़ और इतनी सुंदर वो कलाकृति थी कि नीलामी के दाम बढ़ते बढ़ते और $3,00,000 में वो एक कलाकृति बेची गई। उस कलाकृति में कहने को तो कुछ रंग थे और एक कैनवास था, लेकिन उसमें जो भाव थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक मां अपने छोटे से बेटे को दूध पिला रही है, उसके आंखों में झलकता हुआ मातृत्व और बच्चे के चेहरे की प्रसन्नता, उस पर लोग निछावर थे। $3,00,000 इसकी कीमत थी। रंगों के भरे हुए ट्यूब और ब्रश और कैनवास, इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं थी। देखने वालों ने जो उसमें भाव दशा थी उसकी कीमत आंकी थी और वो $3,00,000 में विदेश में वो कलाकृति बेच दी गई। उस कलाकृति के बेच देने के बाद जिसने वो खरीदी वो उसे हाथ में लिए है और सैकड़ों लोग उसके चारों तरफ हैं। वो जब आर्ट गैलरी के बाहर निकलता है तो लोगों की नजर अचानक बाहर बैठे हुए भिखारियों की लाइन पर पड़ जाती है। उन भिखारियों के बीच में लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि अरे ये कलाकृति और ये भीख मांगने वाली मां, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत गौर से देखते हैं तो हूबहू वही, और वास्तव में वह जो चित्र था उसी मां का था जो भिखारियों की लाइन में बैठी हुई और अपने गोद में छोटे से बच्चे को लिए हुए दो दो दाने मांग रही है। उसे भीख में दो दाने देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके चित्र को $3,00,000 में खरीदने वाले लोग हैं। सवाल ये है, चेतना निरंतर नष्ट होती जा रही है, लेकिन उस चेतना की संभाल के लिए जो भौतिक सुख सुविधा की सामग्री है उसकी कीमत आंकी जा रही है। उस चेतना की कोई कीमत नहीं है। अगर ये दृष्टिकोण लेकर के हम जीवन जी रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि ये जीवन जीने का कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं है। ऐसा तो कोई भी जी लेता है। हमें अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो हमारी दृष्टि में चेतना का महत्व ज्यादा होना चाहिए, इन बाह्य वस्तुओं का, इन चीजों का, जड़ का महत्व नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, यदि हमारा मुख, हमारी दृष्टि ठीक दिशा में है तो हम देखें कि वी मोटिवेटेड बाय फियर और ग्रीड, हम प्रेरणा किससे पा रहे हैं अपने जीने की, तो हम बहुत गौर से देखते हैं कि हमें हमारे जीवन के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, जिस तरह हम जी रहे हैं उस जीने के लिए। दो ही चीजें प्रेरित करती हैं हमारे जीवन के लिए, एक हमारा भ्रम, हमारा भय, या कि हमारा लालच, फियर और ग्रीड। मोटिवेशन के दो ही तरीके देखने में आ रहे हैं आज वर्तमान में। आदमी जितने पाप करता है उस पाप के पीछे प्रेरणा क्या है, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा अपने जीवन को सुरक्षित करने का भाव, क्योंकि भयभीत है कि मर ना जाऊं, और उस भय के चलते अपनी सुरक्षा के साधन ढूंढता है। सुरक्षा के साधन यानी एक अच्छा सा महल, मेरे पास मेरी गाड़ी, मेरे पास नोटियों की गड्डी, ये सब मुझे सुरक्षा दे देंगी, मुझे शायद मरण से मुक्त कर देंगी। इस सुरक्षा के लिए या कि इस लालच के पीछे हम निरंतर अपने जीवन को अहित की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम खोजें अपने भीतर कि मेरे जीवन जीने के लिए मुझे कौन प्रेरित कर रहा है। जिस मौजूदा स्थिति में मैं जीवन जी रहा हूं उसके लिए मेरे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ ऐसा कर लो। मैं दुकान पर जाता हूं सुबह से नहा धोकर के, पवित्र होकर के, भगवान के दर्शन करके, भगवान के सामने सैकड़ों सौगंधें लेकर के, और दुकान पर जाता हूं ग्राहक को देख करके मेरा मन बेईमानी करने का होता है। ये बेईमानी करने के लिए मुझे प्रेरित कौन करता है? मेरी अपनी लालच। मुझे ये देखना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर गौर से देखूं तो मुझे मंदिर जाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर जाने के लिए मेरा स्वार्थ ही मुझे प्रेरित कर रहा हूं? दुकान पर बैठता हूं तब भी स्वार्थवश, मंदिर जाता हूं तब भी स्वार्थवश, किसी से मिलता जुलता हूं, किसी से बहुत आत्मीयता भी व्यक्त करता हूं तब भी स्वार्थवश, कहीं कोई परमार्थ मुझे मेरे जीवन के लिए जीने की प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा नहीं है। शायद जीवन उसका ही श्रेष्ठ है जो परमार्थ के लिए जीता है, जो मोटिवेट होता है अपने और दूसरे के परोपकार के लिए, जिसके पूरे जीवन को प्रेरणा मिलती है। तो अपने अंतरंग के भावों से प्रेरणा मिलती है, और वो भी सद्भाव से प्रेरणा मिलती है। हम तो यहां पर अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपना जीवन जीते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा स्वार्थपूर्ण जीवन जीना हमारा वास्तविक जीवन कहलाएगा? सुबह से शाम तक हम दूसरे से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया। हमारा अपना कर्तव्य क्या है, कभी सोचा? अगर कोई हमें प्रेरित कर रहा है गलत, तब भी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा एम, हमारा गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या साधन अपनाए हैं, ये और हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें अपने जीवन में, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमें वास्तव में कैसा जीवन जीना चाहिए। पहली चीज, हमारी दृष्टि ठीक हो, हमारे अंतरंग में परमार्थ का भाव हो, और फिर हम पहचाने कि हमारा साध्य और हमारे साधन कैसे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर कोई इन तीनों बातों को विचार कर ले तो शायद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दिशा हमें मिल सकती है। हमारा साथ आत्म शांति पाना है या कि क्षणिक भौतिक शांति पाना है, आत्म सुख पाना हमारा लक्ष्य है या कि भौतिक सुख सुविधाएं पाना हमारा लक्ष्य है। हमने क्या बना रखा है अपने जीवन का लक्ष्य, और उस लक्ष्य को बनाने के बाद और हम अपने कर्तव्य से विमुख हुए हैं या अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य एक ही है, हमारा मनुष्य है तो हमारे भीतर मनुष्यता होनी चाहिए, एक ही कर्तव्य है। लेकिन अपने साध्य की पूर्ति के लिए क्या हम अपनी उस मनुष्यता को वालाए ताक नहीं रख देते हैं एक तरफ रख करके, और हम अपनी उस मनुष्यता के स्तर से नीचे गिर करके और अपने जीवन को जीते हैं? क्या यही हमारा कर्तव्य है? चिड़िया शाम घिरने से पहले अपने घर लौट आती है, अपना दाना चुगना बंद कर देती है। गाय एक अंतर मुहूर्त पहले अपने घर मालिक के पास लौट जाती है, अपना दाना चुगना बंद कर देती। गाय भी घास खाना बंद कर देती है। हम नहीं लौट पाते हैं अपने घर, हम तो उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं जिनसे हमें विमुख होना चाहिए था। सबके अपने अपने अनुशासन हैं, हमारे अपने जीवन का कोई अनुशासन नहीं है। कभी सोचा हमने? मैं अभी कल परसों ही लोगों से बात कर रहा था तो अचानक ये बात स्ट्राइक हुई कि अरे गोधूली की वेला, इसका मतलब है कि गायों के लौटने का समय है। उन्हें मालूम है, आपकी घड़ियां उनके पास नहीं है पर उन्हें मालूम है कि बस हो गया, अब वापस लौटना है घर। और हमें तो पूरी जिंदगी संसार की यात्रा करते हो जाती, कभी ये नहीं लगता कि लौटना है वापस अपने तक, कभी नहीं आता ये मन, जबकि हमारा कर्तव्य था। हम तो समझदार और विवेकवान हैं, हमने अपने साध्य की पूर्ति के लिए जो हमारा दायित्व था, कर्तव्य था, वो पूरा किया है या नहीं किया है? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य तो आत्म सुख और आत्म शांति पाने का था। थोड़े से भौतिक सुख सुविधा और शांति के लिए हमने कितनी कितनी लंबी यात्राएं की हैं। हम कभी वहां से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? कभी हमें सच्चे सुख की ललक हमारे भीतर उत्पन्न होगी? हम अपने उस कर्तव्य को, उस दायित्व को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? दो छोटी छोटी सी घटनाएं आपसे कहता हूं, जिसका साध्य पवित्र है और जिसने उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र अपनाए हैं वही व्यक्ति सफल है। वरना तो जिसका साध धन पैसा है और साधन डाका डालना है वो भी अपना जीवन जी लेता है। भैया ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि धन पैसा इकट्ठे करना नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य है तो वो तो कोई भी कर लेता और किसी भी तरीके से कर लेता। आप दुकान खोल के और जितना जैसा व्यापार करके अपने धन संचय करते हैं, कोई बंदूक दिखा करके धन संचय कर लेता है, आप चार बातें बता करके धन संचय कर लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी बंदूक सामने दिखती, आपके अंदर की बात नहीं दिखती सामने। आपकी बंदूक चलाने का ढंग अलग है, आपके पैसे हड़पने का ढंग अलग है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे अपने साधन वही है। हमारा साध्य क्योंकि खोटा है उसके लिए हम साधन भी खोटे अपनाते हैं। हमारा साध्य होना चाहिए था पवित्र और उसके प्राप्ति के उपाय, उसका साधन भी बहुत पवित्र होना चाहिए था। यही हमारा कर्तव्य था, हम अपने इस कर्तव्य से विमुख हुए हैं। एक पिता को चिंता थी कि उसका बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बन जाए, तो पढ़ाया लिखाया, और चूंकि राजा के दरबार में पिता नौकरी करता था और उसका मन था कि बेटा भी राजा के यहां नौकरी करे, तो राजा के पास ले जाके कहा कि बेटे ने पढ़ लिख लिया है, आपके दरबार में कोई काम मिल जाए तो दे दीजिएगा। राजा ने आंख भी नहीं उठाई उस बेटे को देखने के लिए, और उसके पिता से कहा कि जाओ अभी साल भर और अध्ययन कराओ। वो साल भर और अध्ययन कराने के लिए ले गया। जब वहां से लेके आया फिर राजा से कहा कि अब रख लीजिएगा। राजा ने अब की बार थोड़ी सी आंख उठा के एक नजर देखी और कहा कि किसी सदगुरु के पास शिक्षा दिलाओ, अभी दरबार के योग्य नहीं है। पहले लोग शिक्षा के साथ साथ अपने कर्तव्य के पालन करने की दृष्टि मिली है, वैसा आचरण भीतर आया है या नहीं आया है। शिक्षा वही है श्रेष्ठ जो हमें हमारे कर्तव्य से परिचित कराती है। और हमारे पास आज किस तरह की शिक्षा है, हमें अपने कर्तव्य से विमुख करने वाली शिक्षा है। नहीं, हमारे कर्तव्य को करने में मदद देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। किसी सदगुरु के पास ले जाकर शिक्षा दिलाओ, ताकि इसे ज्ञान के साथ साथ अपना कर्तव्य बोध भी होना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं, मैं ज्ञानवान हूं, विवेकवान हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा साध्य क्या है, और उसकी पूर्ति के लिए मुझे क्या कैसे करना चाहिए। ये कोई नहीं सिखाता। आज वर्तमान में यही सिखाते हैं कि दुकान मैंने जैसे चलाई है तुम उससे जरा ढंग से चलाना, मैं तो जहां जहां चूक गया हूं तुम मत चूकना, मैं जहां जहां दो पैसे किसी से ठगा गया हूं तुम दूसरे को ठग लेना। हमारे अपने शिक्षा देने के ढंग ये हैं। व्यापारी अपने तरह से अपने बेटे को तैयार करता है, एक लेमैन की तरह अपने बेटे को तैयार करता है, जो जिस जगह है वो शिक्षा दे करके उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा है। और हम सब भी जो है शिक्षा पाने के बाद भी अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पाए। सदगुरु के पास वर्ष भर उस बेटे को ले जाकर के रखा गया। एक वर्ष होने को है और जब पिता वापस लेने अपने बेटे को पहुंचता है तो बेटा तो आंख उठा के भी नहीं देखता, तो पिता बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जाकर के उससे बात करना चाहता कि चलो साल भर हो गया अब वापस लौट चलते हैं, राजा के दरबार में काम मिल जाएगा, वो जाने से इनकार कर देता है। उसके गुरु से बोलते हैं कि आप कहिए ना। गुरु कहते हैं जाना चाहे तो चला जाए, मैं ना आने के लिए कहता हूं ना जाने के लिए कह सकता हूं। राजा के पास तक खबर पहुंची कि जिसको आपने सदगुरु के पास में साल भर पढ़ने के लिए भेजा था उसने तो अब आपके दरबार में आने से इनकार कर दिया। राजा खुद अपना राजगद्दी छोड़ करके उसे लेने आता है, सोचिएगा, और उससे निवेदन करता है कि अब सचमुच तुम मेरे दरबार के लायक हो गए। जो संसार को ठुकरा सके वो संसार के लायक है। क्या हम सब तो संसार को अपने भीतर रखे हुए लोग हैं और इसलिए संसार में यहां से वहां धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन जो संसार को ठुकरा देता है उसे हम सिर माथे पर रखते हैं, ये अपने अनुभव से देख लीजिएगा। वो संसार के बीच रहकर के भी संसार में पूज्यता पाता है जो संसार में लिप्त नहीं होता, और इसी वजह से कह रहा है कि चलो अब दरबार में तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो इनकार कर देता कि मुझे सच्चा दरबार मिल गया, मुझे मेरा कर्तव्य मालूम पड़ गया, अब कहीं और अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कर्तव्य बोध हमारे जीवन में हमें है, हम कहां चूक रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम छोटी छोटी सी बातों में उलझ करके कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दायित्व को अपने कर्तव्य को भूल जा रहे हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है कि उलझे हुए मनुष्य को सुलझे हुए पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे उलझे हुए मुनि को सुलझे हुए सदगृहस्थ से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे उलझे हुए गृहस्थ को सुलझे हुए पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। आज वही समय आ गया कि हमें, जो कि हम स्वयं विवेकवान हैं, दृष्टि संपन्न हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को, अपने आचरण को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसा आचरण करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व है, तो हमें अपने आसपास के परिवेश से, उन छोटे छोटे जीवों से शिक्षा लेनी चाहिए, शायद उनसे हमें अपने कर्तव्य का बोध हो। एक और छोटी सी घटना ताकि कर्तव्य का बोध हो सके, और फिर अपन नमोकार करेंगे, इसी भावना के साथ करेंगे कि हमें दृष्टि मिले, अपने जीवन को ठीक ठीक पहचानने की दृष्टि मिले, हम निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिए, परमार्थ हमारी दृष्टि में हमेशा रहे, और अपने साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन हम अपनाएं वो इतनी ध्यान से अपनाएं कि कहीं हमारे अपने मनुष्यता के दायित्व से हम विमुख ना हो जाएं। हम जो भी करें वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो कर्तव्य से अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। एक चिड़िया एक बगीचे में रोज आती थी, बहुत चिड़िया आती थी, फल खाती थी, पानी पीती थी, बगीचे का मालिक भी बहुत खुश होता था। वो वहीं बैठ करके अपना अध्ययन भी किया करता था, कभी कभी तो चिड़िया आकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाती थी, उसे अच्छा लगता था। एक दिन बच्चों के कहने से उसने, जैसे अभी आसपास बच्चे लोग, मैं तो बच्चे ही मानूंगा, अबोध हैं, नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, पटाखे और धमाके से कितनी हिंसा, वे नहीं जानते हैं, उनके लिए तो क्षमा ही किया जा सकता है। तो ऐसे ही एयर गन खरीद ली बच्चों के कहने से, काहे के लिए कि बगीचे में जो फल फूल लगे हैं उनको तोड़ने के लिए निशाना साधेंगे, फल टूट करके नीचे गिर जाएगा, इसके लिए खरीदी। और ऐसे ही बैठे बैठे बच्चों के साथ कि लाओ हम बताते हैं कैसे वो अमरूद अभी तोड़ करके नीचे गिराते हैं, और जैसे ही एयर गन से फायर किया वो गोली फल को ना लग करके वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया को लगी। वो चिड़िया लहूलुहान होकर के क्षण भर में नीचे गिर गई। ये जब तक उसके पास पहुंचे तब तक तो उसके प्राणांत होने को थे, लेकिन मरने से पहले उसने पता नहीं किस तरह देखा, जैसे कह रही हो कि कम से कम तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति से तो ऐसी आशा नहीं थी, फिर भी तुमने आज तक दाना और पानी दिया है, तुम्हारे उस उपकार को मैं भूलूं नहीं, तुम्हारे हाथ से मुझे मरना भी पसंद है। और वो मर जाती है, और ढेर सारी चिड़िया आकर के उस दृश्य को देख रही है, चकित हैं कि इस बगीचे के भीतर जहां की हमें हमेशा पानी और फल खाने मिलते थे, आज कोई हमें मार भी सकता है। के पीछे और किस किस के प्राणों को संकट में हम डाल देते हैं। हमसे भी तो लोगों को ऐसी अपेक्षा नहीं होती होगी कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा, मनुष्य होकर के ऐसा करेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। दो एक दिन के बाद बहुत उदास तो था मन, किताब लिए हुए पढ़ रहे हैं, वहीं बगीचे में कुर्सी पर बैठे बगीचे के मालिक को अचानक ढेर सारी चिड़ियों की बहुत तेज तेज आवाज सुनने में मिली। क्या हुआ, इतनी जोर से हल्ला क्यों कर रही हैं चिड़िया लोग? तो चौंक करके यहां वहां देखा तो कुर्सी के नीचे फन फैलाए एक सर्प बैठा हुआ था। अगर वे चिड़िया चहचहा करके आवाज देकर के उसे सचेत नहीं करती तो अगले क्षण वो सर्प उसके मरण में कारण बन सकता था। उछल करके बगीचे का मालिक दूर हट गया। वो हमें संदेश दे गया कि हमने जरूर अपना कर्तव्य ठीक से नहीं किया और दूसरे के प्राणों का घात कर दिया, लेकिन वे पशु पक्षी जिन पर कि आपने उनके मरण के लिए गोली चलाई है, वे भी वो सब भूल करके आपकी रक्षा के लिए अपना कर्तव्य आज भी कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं कब अपने इस कर्तव्य का बोध हमें होगा और हम अपने जीवन में जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है उसे करेंगे। और कर्तव्य को ही अगर कोई ठीक ढंग से कर ले, सच्ची दृष्टि के साथ, परमार्थ भूत श्रद्धा के साथ अगर कोई अपने कर्तव्य को करता है तो कोई वजह नहीं है कि उसका जीवन अच्छा नहीं बने। हम सब इसी भावना के साथ नमोकार करते हैं कि हमें अच्छी दृष्टि मिले। हमारा जीवन बहुत गुजर गया स्वार्थ में, थोड़ा सा परमार्थ हमारी दृष्टि में आए और हम अपने कर्तव्य को पहचान कर और ठीक ढंग से अपना जीवन जिए और अपने जीवन को सार्थक करें। अपन नमोकार करते हैं। ओ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धामंगलम् सावु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्
चत्तारि लोग उत्तमां अरिहंता लोग उत्तमां सिद्धा लोग उत्तमां साहु लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहन्ते शरणं पौवज्जामि सिद्धे शरणं पौवज्जामि साहु शरणं पौवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पौवज्जामि धम्मं शरणं पौवज्जामि
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत वो दो हे दिनवानी भारती तो ये जपो दिन रे जो तेरी शरणागहे शो पावे सुख चैन उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदी पशु धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे
परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्पामीति द्वादश संघ जिनवाणी मां की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्यामा सागर जी महाराज की पूज्य
हो गए और इस क्षण जबकि उसके प्राणान हो रहे हैं हो गए हैं आप निद्रा ले रहे हैं तो क्षण भर को बाह्य जगत में जागने के बाद ही जो एक बार अंतरंग जगत में जाग गया है वो बाह्य जगत में जाग के भी सो जाता है और जो बाहर के जगत में जागता रहता वो अंतरंग में सोया हुआ है। हम सबके साथ वही है राजा के साथ भी वही था लेकिन स्थिति परिवर्तित हो गई। बाह्य जगत में जागते ही देखता है कि एक पुत्र जो था अब नहीं है जिसके लिए मुझे रोना चाहिए लेकिन अभी जो मैं स्वप्न देख रहा था उसमें बारह थे जो अब नहीं है उसके लिए रोना चाहिए किसी के लिए नहीं रोना चाहिए। बहुत जोर से हंसता है उसकी हंसी सुनकर के शेष लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत गहरे दुख के वशीभूत होकर के और अपने मस्तिष्क की क्षमता खो बैठा है पागल हो गया लगता है हंस रहा है जबकि रोने का अवसर है। और राजा को समझाती है रानी साहब की क्या कर रहे हैं तो राजा का जवाब यही होता है कि मैं ठीक हंस रहा हूं अपने उन अभी क्षण भर पहले जब आंख लगी थी, स्वप्न में जो बारह पुत्र राज वैभव था उसके छिन जाने पर रोऊं या इस एक पुत्र के छिन जाने पर रोऊं, अब मुझे समझ में आ गया कि एक खुली आंख का सपना था, एक बंद आंख का सपना था, सपने दोनों थे, सच्चाई दोनों में नहीं है, सच्चाई तो मेरे अपने अंतरंग जगत में जो मेरे आत्म स्वरूप की सच्चाई है वही वास्तव में सच्चाई है, बाकी ये जो राग द्वेष से निर्मित मेरा संसार है वो सच नहीं है, इल्यूजन है, एक भ्रम है। लेकिन कौन इस भ्रम को हमारे भीतर कौन उत्पन्न करता होगा? कोई तो होगा जो हमें हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाता होगा, होने ही नहीं देता होगा। कोई तो होगा जो कि हमें हमारी श्रद्धा को अंधश्रद्धा की तरफ ले जाता होगा। कोई तो होगा जो हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के स्वरूप से अनभिज्ञ बनाने में कारण रहता होगा। कोई तो होगा जो कि हमें सात तत्वों के यथावत स्वरूप का ज्ञान होने में, श्रद्धान होने में बाधक होता होगा। कोई तो होगा जो कि हमें अपने आत्मा की रुचि से विमुख करके संसार में रुचिवान बनाता होगा। कोई नहीं है, मेरा अपना मिथ्या कर्म है और कोई नहीं है। मेरे अपने मिथ्या कर्म के उदय में मैं इस स्थिति से गुजरता हूं कि स्वाधीनता में विश्वास न करके पराधीनता में ही सुख मानता हूं, अपने आत्म सुख में सुख न मान करके इंद्रिय और मन के विषयों में ही सुख मानता हूं, इस संसार को सच्चा जानता हूं और अपने उस आत्म जगत से अनभिज्ञ होकर के उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होने देने में कारण बनने वाली अगर कोई चीज है तो वो मेरा अपना मिथ्यात्व कर्म है। और किसी और ने मेरे लिए बांधा हो ऐसा नहीं है, मैंने ही अपने लिए वो अर्जित किया है मिथ्यात्व, मैंने ही अपने भावों से, मैंने ही अपने कर्मों से, कृत्य से उसे अपने लिए तैयार किया है, जो मेरी आंख पर ही पर्दा डाल देता है। भैया चार लड्डू हो और बहुत सारे लोग खाने वाले हों और उसमें से तीन लड्डू थोड़े थोड़े से किसी को दे दिए जाए तो मन में तो ये रहता है कि पूरा मिल जाता, तो अचानक कोई कृपा करके पूरा लड्डू भी दे दे लेकिन कह दे कि इसमें विष पड़ा हुआ है, ले लो, कोई लेना नहीं पसंद करेगा। तीन लड्डू हैं जो कि मीठे हैं, जिनमें विष नहीं पड़ा है, थोड़े थोड़े भले ही मिले हैं, उतना अहितकारी नहीं है जितना कि ये चौथा लड्डू जो पूरा भी मिल गया है लेकिन विषाक्त है, जिसके खाते ही प्राणांत हो जाएगा। ऐसा ही चार घातीय कर्मों में से एक है कर्म, जो कि हमारे पूरे जीवन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे ज्ञान को, हमारे आचरण को विकृत कर देता है। बाकी तीन में तो गुंजाइश है कि जितना ज्ञान का सरूपसम होगा सो थोड़ा बहुत हो जाएगा, जितना दर्शन दर्शनावरणी का सरूपसम होगा सो उतना चक्षु दर्शन हो जाएगा, जितना अंतराय का सरूपसम होगा सो दान लाभ इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मिथ्यात्व कर्म के मोहनी कर्म के, चाहे दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी, उसके उदय में तो मैं अपनी श्रद्धा और अपने आचरण दोनों को विकृत बना लेता हूं। ये मिथ्यात्व, ये मोहनी कर्म मेरा ही, मेरे लिए अर्जित किया हुआ कर्म है, मेरे ही खोटे परिणामों के कारण। ये समझ में आना चाहिए। कहने में तो जल्दी आ जाता कि क्या करें, हमारा विश्वास नहीं बैठता, क्या करें, हमारी श्रद्धा नहीं जमती। क्यों नहीं जमती श्रद्धा? क्यों हम अंधविश्वास में भागते चले जाते हैं? क्यों हम अपने ही पक्ष के हताग्रही हो जाते हैं? क्यों नहीं हमें हिंसा में अधर्म मालूम पड़ता है, हमें अहिंसा में धर्म मालूम नहीं पड़ता और हिंसा में धर्म मालूम पड़ता? ये कौन हमारी बुद्धि को ऐसा विकृत कर देता है? कौन हमें हे और उपादेय का ज्ञान नहीं होने देता? कौन भले बुरे से हमें और परिचय नहीं कराने देता है? वो एक ही है, अगर कोई है तो मिथ्यात्व है, वो मोहनी कर्म है, और उस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने उस मोहनी कर्म के कारणों पर विचार करना चाहिए, जिस मोह के कारण मैं संसार की वास्तविकता से अनभिज्ञ हूं, मेरे भीतर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं होने देता है जो कर्म, मैं उस कर्म की तासीर समझ गया हूं तब ये समझूं कि उस कर्म को कौन से परिणामों से मैं स्वयं संचित करता हूं। मैंने अपनी अज्ञानता से उसे संचित कर लिया है, तो अब ज्ञान पूर्वक उस संचित कर्म को हटाने का उपाय करूं और आगे और संचित ना हो, इस तरह से मैं प्रयत्न करूं। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन, मेरे अपने परिणाम अवर्णवाद के परिणाम मेरी श्रद्धा को नष्ट करते हैं, मुझे संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का भान नहीं होने देते, मुझे मेरे भीतर अपनी आत्मा की रुचि उत्पन्न करने में बाधक बनते हैं, मुझे सच्चे देवगुरु शास्त्र का ठीक ठीक स्वरूप जान नहीं पड़ता, मैं चाहे जिसे देव मान लेता हूं, रागी और वितरागी में मुझे अंतर नहीं मालूम पड़ता, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, मैं सबको एक एक तराजू पर तौलने की जिद में आ जाता हूं, ये मेरा अपना अश्रद्धान भाव मेरे अपने भावों के द्वारा ही हुआ है अवर्णवाद की वजह से। जो पूज्य पुरुष हैं, उन पुरुषों में जो दोष नहीं है, उन दोषों की कल्पना कर लेने का नाम अवर्णवाद है, और ये हमारे अपने जीवन की एक दुष्प्रवृत्ति है। इस दुष्प्रवृत्ति के चलते हम जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों की कल्पना कर लेते हैं, और जब दोषों की कल्पना करते हैं तो हम सबसे पहले स्वयं दोष युक्त हो जाते हैं। दूसरे में दोष देखने वाला ये ध्यान रखे कि पहले वो स्वयं दोष युक्त हो गया है, दूसरा दोष युक्त है या नहीं वो बात में साबित है, दूसरे को बुरा करने कहने वाला तो भला नहीं है ये तो पक्का हो गया, दूसरा बुरा है कि नहीं वो बात में। जो दूसरे को बुरा कहे इसका मतलब है भला आदमी तो नहीं है, ये तो पक्का है, भला आदमी दूसरे को बुरा नहीं कहे। दुर्योधन महाराज अगर ढूंढने जाएंगे तो एक भी सज्जन नहीं मिलेगा संसार में, और युधिष्ठिर महाराज जाएंगे तो एक दुर्जन नहीं ढूंढ पाएंगे, जबकि संसार में सब है, लेकिन हमारी अपनी दृष्टि है, हमारा अपना नजरिया है देखने का, वो नजरिया कैसा है वो हमारे मिथ्यात्व से ग्रसित है, अगर वो नजरिया तो हमें संसार में सब ऐसा ही दिखेगा, दोषपूर्ण दिखेगा, और अगर हमारा नजरिया हमारी दृष्टि निर्मल हो गई है तो संसार में आत्म तत्व के अलावा और राग द्वेष नहीं दिखाई पड़ेगा, सब दूर राग द्वेष दिखाई पड़ता है, तो समझिएगा कि हमारी अपनी ही दृष्टि में कहीं खोट है। भाई समझें हम इस चीज को कि हमने क्या करा होगा, अपनी इस दृष्टि की निर्मलता को कैसे हमने खो दिया होगा। केवली भगवान जिन्होंने की चार घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान केवल दर्शन या अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर, ये जो अनंत चतुष्टय है उसकी प्राप्ति कर ली, जो जन्म मरण और बुढ़ापे की वेदना से दूर हो गए, जो रोग शोक भय भूख प्यास इत्यादि 18 दोषों से रहित हो गए, ऐसे उन केवली भगवान ने कल्पना करना कि उन्हें भी भूख प्यास लगती होगी, उन्हें भी रोग शोक होता होगा, बेबी करना हार करते होंगे, ऐसी केवली भगवान के स्वरूप को लेकर के और अज्ञानता के कारण और उनमें दोषों की कल्पना कर लेना, ये हमारे अपने भीतर दृष्टि को मलिन बनाने वाला भाव है। भाई सावधानी रखना चाहिए, वीतरागी को तो वीतरागी ही मानना, वीतराग में राग की कल्पना नहीं करना, जैसे कि किसी रागी देशी के पास जाकर के और उससे हम याचना करते हैं संसार के भौतिक सुखों की, वैसे ही किसी वीतरागी के पास जाकर के भी हम भौतिक सुखों की ही याचना करते हैं, और ये मान करके करते हैं कि शायद ये मेरी पूर्ति कर दे, ये क्या चीज है, वे मेरे भौतिक सुखों की पूर्ति करने वाले हैं, इसका अर्थ है कि वे कर्ता पने से युक्त हैं क्या, वे संसार के कर्ता हैं क्या, तो ऐसे उस दोष की कल्पना उनके भीतर क्यों करनी चाहिए, वे तो अपने आत्मा में लीन है, मैं उनसे इस तरह के अपने संसार के काम करवाने की जो भावना रखता हूं क्या वो ठीक है? इसका मतलब है कि मेरे अंदर अभी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है केवली भगवान के स्वरूप का, उनकी वितरागता, उनके हितोपदेश और उनके सर्वज्ञपने का ज्ञान नहीं है, उनके उस अनंत चतुष्टय के वैभव का ज्ञान नहीं है। तभी तो मैं बाह्य में जो उन्होंने छोड़ा है उसे पूजता हूं और जो उन्होंने पाया है उसे भूल जाता हूं। अभी तो दो दिन पहले उन्होंने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करी थी बाह्य वैभव को छोड़ करके, और हमने बाह्य वैभव की पूजा करी उस अनंत चतुष्टय को छोड़ करके। बाहर हम और हम कहें कि हमारे भीतर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, हमारे भीतर तो कर्म ऐसा बन जाता है, तो बनेगा क्यों नहीं बने? ये तो हमारे अपने परिणामों से, किसी के कहने सुनने से थोड़ी है, ये तो हमारे अपने अज्ञानता से, हमारे अपने परिणामों से बनता है। जिस धन संपदा को छोड़ करके भगवान वितराग और सर्वज्ञ और हितोपदेशी हुए और अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया, उस मोक्ष लक्ष्मी को, हम उस मोक्ष लक्ष्मी को भुला करके और इस धन पैसे की जो कि अनीति से कमाया जाता है उसकी पूजा कर रहे हैं। बताइएगा, विचार करिएगा कि क्या ये ठीक है? ये हमारे संसार को बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला है? बढ़ाने वाला है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये अंधश्रद्धा है। इसी तरह से श्रुत के बारे में क्या क्या कल्पनाएं हम कर लेते हैं, शास्त्र के बारे में क्या क्या कल्पनाएं हम कर लेते हैं, अपनी मनमानी करने के लिए हम शास्त्र का हवाला देकर के और कितनी कितनी बातें और लोगों को बता देते हैं और भ्रम पैदा कर देते हैं। अरे कौन कहता है कि शास्त्र में मांस खाने का निषेध किया है, खा सकते हैं? अरे कौन कहता है कि शराब पीने का, वो देखो वो लिखा हुआ है कि सुरापान करते थे बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे, तो शास्त्र में तो लिखा है, प्रथमा नियोग में तो लिखा हुआ है कि वो सुरापान करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। और कई कई लोग तो कल्पना कर लेते कि भगवान तक सुरापान करते थे, बताइए आश्चर्य। और वैसी कल्पना कर लेते उनमें, ये अवानवाद है, ये हमारे अपने दृष्टि को मलिन करने वाला भाव है। और रात्रि भोजन करना वो तो चलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अंडा तो शाकाहारी है, ठीक है, चलता है, ऐसा है क्या? ये शास्त्रोक्त जो बातें हैं उनके विपरीत की कल्पना कर लेना और उससे शास्त्रानुकूल मानना, ये सब शास्त्र का वर्णवाद है। सावधानी रखना चाहिए। मेरी कमजोरी है कि मैं इन चीजों से नहीं बच पा रहा हूं, ये जुदी बात है, लेकिन यह शास्त्रोक्त है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, ऐसे भ्रम में करना अपने आप को संसार में पतित करने के लिए उपाय करना है। किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, हम स्वयं इस दोष से लिप्त हैं। जितने लोग रात्रि भोजन करते हैं और रात्रि भोजन करने को ठीक मानते हैं, मानिएगा कि वे स्वयं श्रुत का वर्णवाद कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना। करते हैं मजदूरी में पर ठीक नहीं मानते, वो खुद ही भाई, लेकिन करते हैं और उसे ठीक मान करके करते हैं, तो इसके मायने हैं कि वे शास्त्रोक्त बात को नहीं जान करके या जान बूझ करके और उसमें दोषों की कल्पना कर रहे हैं। मांस मदिरा का सेवन ये कहकर के करना कि शास्त्रोक्त है, ये सब अपने जीवन को पतन की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। विचार करना चाहिए, केवली शुद्ध और संग, चतुर्विध संग होता है, मुनियों का भी होता है और तीर्थंकर का चतुर्विध संग होता है, जिसमें मुनि आरी का श्रावक श्राविका होते हैं, और मुनियों का संग वो है जिसमें यति ऋषि मुनि और अंगार, ये चार प्रकार के साधु होते हैं, ये चतुर्विध संग होता है। इस चतुर्विध संग में जो दोष नहीं है उन दोषों की कल्पना कर लेना, मिथ्या दोषों की कल्पना कर लेना। अरे ये सब तो जो है ऐसे दीनहीन घूमते रहते, इनका जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, पहनने को कपड़े तक नहीं है, कौन से सुख पाएंगे ये लोग? अभी दुख में व्यतीत कर रहे हैं जीवन, तो कौन सा सुख पाएंगे? सब मिथ्या है, ऐसे दोष की कल्पना करना। ये तो सब शूद्र होते हैं, अत्यंत अपवित्र होते हैं। की दुर्गति हो जाएगी, ऐसा विचार तक लाना। इनको सम्यक रम्यक दर्शन नहीं होता, ये सब मिथ्या दृष्टि होते। ये भी एक विचार। एक ग्रहस्थ को तो सम्यक दर्शन हो सकता और एक मुनि महाराज को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये विचार कौन सा विचार है? ये अवैधवाद है संघ का। ये बहुत विचार की बात है, बहुत एनालिसिस अपने भीतर जांच करके करने की बात है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, किसी और के कहने से नहीं, हमें अपने कर्मों से डर करके और सावधान हो जाना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। जो चतुर्विध संघ मुनि आर्य का श्रावक श्राविका भगवान जिनेन्द्र के द्वारा प्ररूपित किया गया और समर्पित किया गया है, उस संघ में हम दोषों की कल्पना क्यों करें? अगर कोई दोष युक्त भी है तो उससे संघ दोष युक्त नहीं होता, वो व्यक्ति विशेष दोष युक्त है। मोक्ष मार्ग तो पवित्र की है, मोक्ष मार्ग में कहीं कोई दोष नहीं आता। क्यों नहीं हमारे भीतर ऐसा विचार आता है कि वो व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है कि वो दोष युक्त हो सकता है? हो सकता मे भी, लेकिन मोक्ष मार्ग तो चतुर्विध संघ तो हमेशा से जो है मोक्ष मार्ग पर ही आरूढ़ रहने वाला है और अपने कल्याण का मार्ग है। मुझे उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए। और धर्म अहिंसा धर्म है, वीतराग धर्म है, आत्म धर्म है। इस धर्म में हम दोषों की कल्पना कर लेते हैं तो वो धर्म का अवरणवाद है। जब हिंसा को हम धर्म मान लेते हैं, जब पाप कार्यों में भी हम धर्म मानने लगते हैं, जब हम पाप को भी पुण्य मान लेते हैं भैया, और पुण्य को कर्म ना मान करके और उसी में भ्रमित हो करके गाफिल हो करके और उसी में वस्तु स्वरूप मान करके भ्रमित हो जाते हैं, तब वह भी धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण धर्म का अवरणवाद ही है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ करके और फिर अपने जीवन में उसे धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म में मिथ्या बातों का समावेश करके उसे धर्म की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। ये सावधानी, वरना हमारा श्रद्धान जो आज नहीं है आगे भी नहीं होगा इसी मिथ्यात्व कर्म के कारण। और एक चीज और है, अवरणवाद जिसका हो सकता है और होता है, देवों का अवरणवाद जो सेलेस्टियल बीइंग्स कहलाते हैं, स्वर्ग के देव कहलाते हैं, जो चार निकाय या चार समूह वाले हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक, ये देवों के चार निकाय चार समूह हैं। ये सब भी अपने संसार का अनुभव करते हैं। ये भी चार गतियों में से एक गति है, लेकिन देवों के बारे में ऐसा कहना कि देव तो मदिरा पान करते हैं, ये देवों का अवरणवाद है, ये देवों पर लगाए जाने वाले मिथ्या दोष है। वे तो हमारे द्वारा चढ़ाई हुई सामग्री को भक्षण करते हैं, इसलिए चढ़ा रहे हैं। वे हमारी चढ़ाई हुई सामग्री को ना भक्षण करते हैं, ना विश्वा पान करते हैं, ना मदिरा पान करते हैं भैया। वे मानस आहार करने वाले हैं, जिनके भूख की वेदना क्षण भर को होती है और अगले क्षण अमृत उनके कंठ से झर जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। देवों का स्वरूप तो कितना भी निकृष्ट देव क्यों ना हो, वह भी मानस आहारी करता है, कबलाहार, और हमारे जैसा जैसे औदारिक शरीर के लिए आहार की आवश्यकता होती है ऐसा हानि करता। सो हमारी चढ़ाई हुई चीज देवता ग्रहण करेंगे या कि हम जाकर के उन्हें मदरा चढ़ाएंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे या कि बलि देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, ये सब मिथ्या धारणाएं। बहुत मुश्किल तो लग रही होगी, पर सच्चाई तो सच्चाई है। हमारे मुश्किल लगने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी उन देवों के भीतर हम जो दोषों की कल्पना कर लेते हैं उससे हमारा ही अहित होता, उनका कोई बिगाड़ नहीं होता, में सुख का ही अनुभव करते रहते हैं भैया, और हम उनके बारे में यहाँ बैठे बैठे मिथ्या दोषों की कल्पना करके और उनके स्वरूप को विकृत कर देते हैं। हमें उनके वास्तविक वे सर्वांग सुंदर होते हैं, अत्यंत सुंदर वैक्रियक देह धारण करने वाले हैं, चारों निकाय के देव और देवी और देवता, अत्यंत सुंदर रूप हम उनके नाना रूप बना करके और उनके सामने नाना प्रकार से वस्तुएं चढ़ाकर ऐसा मानते हैं जैसे कि उन्होंने ही उसे स्वीकार कर लिया है। ऐसी दोषों की कल्पना करने से भी हमारे भीतर ये मोहनी कर्म प्रबल होता चला जाता है। अगर ये सब चीजें हमारे जीवन में है और हमें सच्ची श्रद्धा नहीं हो पा रही है तो मानिएगा कि हमारे ही खोटे कर्म के कारण नहीं हो पा रही है। हमें सावधान हो जाना चाहिए और बचना चाहिए इन सब बातों से जो कि आचार्य भगवंतों ने हमारे मोहनी कर्म को आश्रित करने में या मोहनी कर्म को सघन बनाने में कारण बताया है। हम इसलिए यहाँ रोज उस कर्म के बारे में जानते हैं जो कर्म हमें संसार के बंधन में डालने वाला है, इसलिए जानते हैं ताकि हम उन बंधन से मुक्त होने का उपाय कर सकें। क्योंकि जब तक हमें अपने बंधन की तासीर नहीं मालूम होगी कि कैसे बंधा है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं, जब तक ये टेक्निक नहीं मालूम होगी तब तक हम कोई भी रॉ मटेरियल हो और उससे ओरिजिनल चीज प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं, रिफाइनरी में ले जाते हैं। लेकिन रिफाइनरी वाला ये जानता है कि उसमें किस तरह का की इंप्योरिटीज है और उनका बाइंडिंग किस